نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اس سلسلے میں آج ہم جس صحابی کے حالات زندگی پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ السخمی. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بوسہ دے، اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. یہ ہے وہ قول جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو انہوں نے عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں کہا. کب کہا؟ انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں گے تو اس میں سے انشاءاللہ ہمیں یہ چیز ملے گی. شروع کرتے ہیں ہماری اس داستان کے بطل جلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ عظیم مرتبہ صحابی ہیں جنہیں عبداللہ بن حذافہ سخمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس جملے کو آسان کر لیں، کتاب میں جہاں کوئی مشکل لفظ ہے اس کو ڈراپ کر کے پڑھنا سیکھیں، تاکہ کبھی آپ خود بھی بچوں کے سامنے پڑھیں تو وہ لفظوں میں نہ الجھتے رہیں اور پھر ان کے معنی ڈھونڈتے پھریں. کوئی بات نہیں، یہ کوئی گرامر کی کلاس نہیں یا لینگویج کی کلاس نہیں، ہم تو اپنے اصلاح کے لیے ان کے حالات سنتے ہیں. تو اس مشکل جملے کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہماری اس کتاب میں عظیم المرتبت صحابہ کے قصوں میں سے ہم آج اس عظیم مرتبہ صحابی کی بات کریں گے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے. تاریخ کے لیے ممکن تھا کہ وہ ان کے بارے میں بھی اسی تغافل شعاری کا سلوک کرتی، یعنی غفلت کا شکار ہو جاتی، جیسا کہ ہزاروں انسانوں کے بارے میں اس نے روا رکھا ہے. اس مشکل جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح ہزاروں لاکھوں انسان آئے اور چلے گئے، تو تاریخ اس انسان کو بھی بھلا دیتی، جو آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ نے ان کو نہیں بھلایا. اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کن کو موقع دیتا ہے آنے والی نسلوں تک قائم کرنے کا، جو لوگ کوئی بڑا کام کرتے ہیں. لیکن اسلامی انقلاب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو وہ موقع عطا کیا کہ اس دور کی دو بڑی طاقتوں سے ملیں، قیصر روم اور شاہ ایران. ان سے مل کر ایسی داستان کو جنم دیں جو زمانے کے حافظے اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے. کیا معلوم ہوا؟ عبداللہ بن حذافہ جو تھے، یہ اس لحاظ سے قابل تقلید بھی ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ایک خاص بات ہے، اور وہ کیا کہ اس دور کی دو بڑی سپر پاورز روم اور ایران کے بادشاہوں قیصر اور شہنشاہ ایران جو تھا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور کس انداز میں ہوئی اس کو ہم دیکھیں گے. اور یقیناً کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جانا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ نہ ہوا ہو، جہاں زندگی میں اس شخص کی آزمائش ہوتی ہے وہاں وہ چیز بعد میں پھر اس کی ثابت قدمی کی بنیاد پہ ایک اعلیٰ شان بھی بنتی ہے اس کی. تو پہلا واقعہ جو ان کے زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، فارس کے بادشاہ کسرا سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمی بادشاہوں کو، اجمی بادشاہ کون ہے جو عربی نہ ہو، اجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام کو وفدوں کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا. یہ قاصد یعنی امبیسیڈرز ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے، نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے جاننے والے تھے. اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کا اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا. پیراگراف سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اب مکہ والے ہم پہ حملہ نہیں کریں گے اور ہم دونوں کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو اب یہ وہ وقت تھا کہ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عرب سے باہر جو حکومتیں تھیں ان کو تبلیغ کی کوشش کی. یہاں سے آپ دیکھیے کہ عمل کی باتیں بہت ساری نکلتی ہیں، کہ اگر کبھی ایک کام کا موقع نہ ملے یا نہ رہے تو دوسرا کام ڈھونڈ لینا چاہیے. جنگ نہیں ہوئی تو ہم مطمئن ہوتے، چلو اب ویکیشن پہ چلے جائیں، اب چھٹیاں منائیں، اب خوش ہوں. نہیں، اب ایک طرف سے مطمئن ہے تو دوسرا کام کر لو. अपनी ज़िंदगी में हम सबको भी यही असूल बनाना चाहिए। कभी-कभी हम कोई काम करने बैठते हैं, फिर हालात साजगार नहीं रहते, फिर क्या करें, छोड़ दें? नहीं, दूसरा काम कर लें। आप काम करने बैठे, आपने देखा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अब चलो छोड़ दें? नहीं, आप ढूंढें अपने कंप्यूटर में क्या और काम कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइलों को सेट कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फोल्डर्स को कर सकते हैं, कोई चीज़ें आपके पास अगर सेव्ड हैं वो सुन सकते हैं, कोई और काम कर लें। वो लोग जो ज़िंदगी में कामों को इधर उधर कर लेते हैं, वो फिर इंशाल्लाह एक वक्त आता है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ इस पैराग्राफ में जो हमें समझ में आई वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मैनेजमेंट, आप लोगों को बादशाहों के पास भेज रहे हैं। आप इन बातों को उस वक्त ज़्यादा अच्छा समझेंगे जब आप आज के तनाजर में देखें। मिसाल है कि मुसलमान हुक्मरान है और अब वो चाहता है कि दीन ने इस्लाम का पैगाम वहाँ वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ अभी तक नहीं पहुँचा, या एक ऐसी मुहिम शुरू की जाए कि हर नॉन मुस्लिम हुक्मरान जो है उस तक एक अच्छे तरीके से एक एम्बेसडर को भेजा जाए और इस्लाम की बात करे। अब आप ज़रा सोचिए, ये क्या आसान काम है? मुश्किल काम है ना। एक तो एम्बेसडर्स के पास जाना, फिर दूसरा उनको इस्लाम की दावत देना, फिर बातें वो करना जो उनके शाही आदाब के खिलाफ है। और सहाबे कराम जिन्होंने आज तक कोई बादशाह देखे भी नहीं थे, ना उनको आदाब पता थे, लोग कैसे होते हैं, कैसे चीज़ों को पसंद करते हैं, तो यकीनन ये कठिन जॉब थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए लोगों को मुंतखब किया, तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के की। ये मुहिम बजाते खुद बहुत खतरनाक थी। इसके मानी थे कि इस मुहिम पर जाने वाला हथेली पर जान रख कर जाए और जब कामयाबी से लौट आए तो यूं समझे जैसे इसने नया जन्म लिया। मामले की इस अहमियत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम को जमा किया और अल्लाह सुबहानहू व तआला की हमदो सना के बाद इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम में से बाज़ हजरात को तबलीग इस्लाम के सिलसिले में शाहाने अजम की तरफ रवाना करूँ। अजम अजमी से यानी अजम के बादशाहों की तरफ मुंतखब करूँ। खबरदार, तुम्हारी जानिब से इस मामले में इख्तलाफ की वो नौईयत न पैदा होने पाए जो ईसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के माबैन रूनुमा हुई। इसके जवाब में सहाबे कराम ने एक जुबान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हुक्म की बहरहाल तामील करेंगे और आपकी मर्जी के मुताबिक फ़राइज़ पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देंगे, आप जहाँ चाहें हमें भेज दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 सहाबे कराम का इंतखाब किया जो मुलूके अरब और शाहाने अजम यानी अरब और अजम के बादशाहों की तरफ दावती खतूत लेकर जाएं। इन 6 में से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु भी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर फारिस के बादशाह किसरा की तरफ रवाना हुए। पूरे हिस्से का उन्वान क्या है? खतरनाक मुहिम। अब देखिए कि सहाबे कराम का ईमान देखिए और अल्लाह की लिए हर काम करने का जज्बा देखिए कि इतनी मुश्किल मुहिम पे भी ये नहीं कहा हम नहीं करेंगे। आज के दौर में कोई किसी से कहे किसी सुपर पावर में जाओ और वहाँ जाके तबलीग करो इस्लाम की और डायरेक्ट जाके बादशाह से बात करो, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जाने के लिए तैयार ना हो इल्ला माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने लोगों की जहन साजी करने के बाद फिर इस काम का उनको हुक्म दिया और लोगों ने मान लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन खुजाफा रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी सवारी तैयार की, बीवी बच्चों को अलविदा किया यानी उनको खुदाफिज कहा और तनहा सहराओं और मैदानों को तय करते हुए सरजमीन फारिस में पहुंचे। बादशाह से मुलाकात की इजाज़त तलब की और दरबारियों को खत की अहमियत से आगाह किया। इस मरहले पर शाह ईरान ने इनकी आमद की खबर सुनकर शाही दरबार को सजाने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में एक खसूसी इजलास तलब किया गया और जोमाए फारस यानी जो उनके बड़े बड़े लोग थे, फारस के बड़े बड़े लोगों को इस इजलास में शरीक होने का हुक्म दिया। इस इख्तमाम के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाहु अन्हु को दरबार में आने की इजाज़त दी। ये वाला हिस्सा जो है इसमें क्या बात पता चलती है? पहली बात है कि सवारी तैयार की यानी जाने के लिए इख्तमाम किया, मुनासिब इंतजाम किए, बीवी बच्चों को अलविदा कहा। इससे क्या पता चलता है कि बीवी बच्चों वाले थे? तो क्या पता चला कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां और उनकी मसरूफियात इंसान को अल्लाह के दीन के काम करने से नहीं रोकती। अगर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए मशरिक तो क्या मगरिब और अरब तो क्या अजम में जाना पड़े, तो इंसान इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जा सकता है, उसको जाना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको महसूस हुई वो क्या है कि ईरान के बादशाह ने जब इनके आने का सुना तो उसने शाही दरबार को आरास्ता करने का हुक्म दिया। इससे आपको उस दौर में मुसलमानों की इज्जत और उनकी रौनत उन बादशाहों के दिलों पे होती भी महसूस होगी, क्योंकि इंसान आरास्ता तो उसी के लिए करता है, कोई चीज़ सजाता तो उसी के लिए है जिसकी कोई अहमियत होती है। यानी मुसलमान एक अहम रोल रखते थे ऐसे मौक़ों पे, यानी ऐसे लोगों की निगाहों में। तो इस हिस्से का आप उन्वान क्या लिख सकते हैं? कासिदे रसूल दरबारे किसरा में। और यहाँ एक छोटी सी बात वाजे कर दूं कि कैसर और किसरा लकब थे। हमारे यहाँ एक आम बात यह होती है, अच्छा कैसर किसी का नाम था या किसरा किसी का नाम था, ऐसा नहीं था। बल्कि उस दौर के रिवाज के मुताबिक हर मुल्क के बादशाह का या वहाँ का जो बड़ा होता था उसका एक टाइटल होता था। जैसे यमन के हुक्मरानों को तुब्बा कहते थे, ईरान के बादशाहों को किसरा कहते थे, रोम के बादशाहों का लकब कैसर था, हबशा के बादशाहों का लकब निजाशी था। तो ये हर दौर के अंदर मुख्तलिफ हुए। मिस्र के हुक्मरानों का जो था वो फिरौन था, तो ये हर दौर में इस तरह हुआ। तो ये उस दौर में जो भी था उसकी बात हो रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रदी अल्लाहु अन्हो शाह ईरान के दरबार में इस कैफियत से आए कि उन्होंने एक मामूली चादर जेब तन कर रखी थी, पहन रखी थी, जिससे अरबों की सादगी साफ तौर पर झलक रही थी। आपका सर बड़ा और जिस्म खुट्टा हुआ यानी मजबूत था। इस्लाम की इज्जत और वकार के शोले दिल में भड़क रहे थे, और इसी तरह ईमान की अजमत और बुलंदी दिल की गहराइयों में दमक रही थी। किसरा ने जब इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपने लोगों में से एक को इशारा किया कि वो इनसे खत पकड़े। ईवान में यानी उस दरबार में मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर जब इनसे खत लेना चाहा तो आपने फरमाया, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये खत बराहे रास्त किसरा के हाथ में थमाऊं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ना मानने की जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। ये देखकर किसरा ने हुक्म दिया, इसे छोड़ दो और मेरे पास आने दो। हजरत अब्दुल्ला जब किसरा के करीब आए तो इसने आपके हाथ से खत वसूल किया और अहले हीरा के अरबी तर्जुमान से कहा कि इस खत को खोले और इसमें जो चीज़ दर्ज है वो पढ़कर मुझे सुनाए। खत का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद रसूलिल्लाह इला किसरा अजीम फारिस सलामुन अला मन तबिल हुदा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी जानिब से अजीम फारस किसरा के नाम है। सलामती का हक उसको है जो हिदायत की राह पर चला। किसरा ने भी खत के ये इब्तदाई अल्फाज ही सुने थे कि इसके सीने में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी, चेहरा सुरख हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में अपना नाम पहले लिखा था, इसके बाद में किसरा का। तो किसरा ने गुस्से में भर कर वो खत छीन लिया और इसे पुरजे पुरजे कर दिया, बगैर ये जाने कि खत में क्या लिखा है। चीख कर यूं बोला, मेरा गुलाम होकर उसे ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह मुखातिब करे। फिर हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल्ला बिन खुजाफा रदी अल्लाहु अन्हो को मेरे दरबार से बाहर किया जाए, चुनाचे इनको दरबार से निकाल दिया गया। तो यही उनवान है इसका, कासिदे रसूल दरबार से निकाल दिया गया। बहुत ही ज़्यादा बातें हैं इसमें हमारे अमल की, अगर हम गौर करें इनको तो। आप देखिए कि सबसे पहले कि जब अब्दुल्ला हैं वो शाहरान के दरबार में जा रहे हैं तो लिबास क्या पहन रहे, एक सादी सी चादर। उन्होंने नहीं सोचा कि हम भी कोई आला किस्म के कपड़े पहन लें, बड़े दरबार में जा रहे हैं। हम अपने आप को पूछें, हमें किसी ज़रा बड़ी मीटिंग में जाना पड़े या किसी ऐसी जगह में जहाँ चार लोग हमें देखें और ख़ास तौर पर वो नॉन मुस्लिम हो, तो हम किस तरीके से अपने लिबास पहनते हैं? क्या हम उन्हीं कपड़ों में और उन्हीं आउटलेट्स में बाहर जाते हैं जिसमें आम हालात में जाते हैं? फिर दूसरी चीज़ आप देखिए कि जब उन्होंने देखा कि कोई दूसरा शख्स खत लेना चाहता है तो उन्होंने नहीं दिया, कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको देना तो मैं उसी को दूंगा। इससे क्या पता चलता है कि सहाबाए कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मनोअन मानते थे, एज इट इज़ मानते थे, जो आप कहते उसी को मान लेते। इस अमल को भी देखिए कि जब उन्होंने खत ना देना चाहा तो फिर किसरा ने मजबूर नहीं किया, कहा ठीक है मुझे दे दो। इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान अपनी किसी बात पे फर्म हो जाता है, स्टैंड ले लेता है, तो फिर दूसरा भी शख्स उसको मौका दे देता है। अगर कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाए क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ठीक है इस ओके, ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा था हाथ में देना, चलो कुछ भी कह लें, तो वो हो सकता है उनके दिल में रोब आता। इन चीजों से दिल में रोब किसका आता है? अल्लाह का आता है। और जो इंसान हक पे होता है फिर वो अपनी बात मनवा लेता है। फिर उसके बाद अब देखिए खत का मतन कितना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान और मेहरबानी फरमाने वाला है। मिम मोहम्मद इन रसूलिल्लाह, वो मोहम्मद सल्लम जो अल्लाह के रसूल है। और इला किसरा अजीमी फारसा सलामुन अला मन तबा अल हुदा। तीन बातें हैं इसमें। पहली बात है कि अल्लाह के नबी ने अपना तारुफ कराया, अल्लाह का रसूल कहलवाया। दूसरी बात है कि किसरा को भी अच्छे लकब से पुकारा, कोई गुस्ताही नहीं की, कोई उसको बुरे लफ्जों में नहीं कहा, बल्कि अजीम ही फारस। इससे क्या पता चलता है कि जब खत लिखा जाए तो जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं उसको अच्छे लफ्जों में मुखातिब करना चाहिए, उसके साथ मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ये समझे कि मेरी बेइज्जती की गई। फिर तीसरी चीज़ देखिए, सलाम किस पे है? मन तबल खुदा। इससे क्या पता चलता है कि किसी जगह अगर सलाम किया जाए और आपको नहीं यकीन कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, या कुछ मुसलमान है कुछ गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ, तो यही सलाम का तरीका है कि सलामु मन इत्तबल हुदा। सलाम तो उसको है जिसने हिदायत की पैरवी की। बस जब हम सोचते हैं ना किसी मजलिस में हो क्या फ़ोन करें, बात करें, या फ़ोन पे क्या मैसेज छोड़ें, तो उसके लिए यही तरीका होना चाहिए कि जिसने इस्लाम को मांगा उसको सलाम दे दें। तीसरी चीज़ आप देखिए कि इससे खत लिखने का अंदाज़ भी समझ में आता है। हम अमूमन पूरा खत लिख के फिर लिखते हैं किसकी तरफ से, ऊपर उसका नाम तो लिख देते हैं जिसको पुकारते हैं, और उसको पहले ही पता होता है अपना नाम, तो अपना नाम नीचे लिखते हैं। हालांकि बेहतरीन तरीका क्या है कि अपना नाम भी ऊपर लिख दें। अब आप किसी को खत लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं, मिसाल लीजिए, बाज़ ईमेल्स तो फेमिलियर होती हैं, नाम से पता चल जाता है, बाज़ आपको नहीं पता, फिर आप ऑल द वे स्क्रॉल करके नीचे से देखते हैं, ओ अच्छा इसकी ईमेल है, तो बेहतरीन अंदाज़ क्या है कि ऊपर रखा जाए। फिर आप देखिए कि किसरा, यानी यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक सा पहलू है कि हिदायत का पैगाम मिला लेकिन अपनी बड़ाई के एहसास ने उसको बात समझ में ना आने दी। किसरा ने सिर्फ इसी बात को माइंड किया कि मेरा नाम पीछे क्यों और उनका नाम आगे क्यों। क्या वाकई इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई आपको पहले बुला ले दूसरे को बाद में, या दूसरे को बाद में और आपको पहले, कोई फर्क पड़ता है? क्या आज ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं है? कहीं हम भी नहीं बातों पे तो कई दफा नाराज नहीं हुए थे लोगों से कि उसने मुझे खुद कॉल करके क्यों नहीं इनवाइट किया? दूसरों को तो फोन किया था, मुझे सिर्फ कार्ड भेज दिया। मेरे लिए तो वो पीछे की कुर्सियां रखी और कुछ लोगों के लिए आगे की रखी। आज भी लोग अपनी जात की बड़ाइयों का शिकार हैं, और ऐसे ही लोग जो होते हैं फिर उनको फायदा हिदायत से नहीं होता। फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी को अपना गुलाम कह रहा है। इससे राउनत समझ आती है कि जब कोई शख्स दुनिया की किसी बड़े मुकाम पे पहुंचता है तो वो सारी दुनिया को अपना गुलाम समझता है। आज भी कुछ बड़ों का दिल यही होता है कि पूरे दुनिया के मुसलमान उनके गुलाम हो, तो हालांकि वो उनके मुल्क में नहीं रहते थे लेकिन उसके अंदर चूंकि बड़ाई का एहसास था तो उसने उनको अपने दरबार से निकाल दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ईवाने किसरा से, यानी किसरा के महल से निकल कर चल दिए। इन्हें कुछ इल्म न था कि अब इनके साथ किस्मत क्या फैसला करने वाली है, इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या इन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। इस पर ज्यादा अरसा न गुजरा था कि ये कह उठे, बखुदा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा देने के बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक रखा जाएगा। ये कहकर ऊंटनी पर सवार हुए और चल दिए। जब किसरा का गुस्सा थमा तो इसने दरबारियों को हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन खुजैफा रजी अल्लाह अन्हु को मेरे पास दोबारा पेश किया जाए। उन्होंने उसको बहुत तलाश किया मगर कहीं से उनका पता न चला। आखिर में उन्हें पता चला कि वह जजीरतुल अरब से निकल कर कहीं आगे चले गए और अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में हाजिर हुए और बताया कि इसने आपके खत को फाड़ कर फेंक दिया। इस पर आपने फरमाया, अल्लाह ने इसकी कुबाए इकतदार के पुर्जे उड़ा दिए, यानी कुबा कहते हैं लिबास को, ड्रेस, के जो इसका इकतदार है इसके पुर्जे अल्लाह ताला उड़ा देगा। इधर किसरा ने यमन में अपने नायब बाजान नामी जर्नेल को हुक्म दिया कि हजाज में जिस शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है इसे गिरफ्तार करने के लिए फौरन अपने हाथ से दो आदमी रवाना करे जो इसे पकड़कर मेरे दरबार में पेश करें। बाजान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए अपने दो मजबूत जर्नैल एक खत देकर मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए। इस खत में लिखा था कि खत देखते ही बिला ताखीर इनके हमरा किसरा के दरबार में पहुंच जाए। इन्हें ये भी ताकीद की कि इस शख्स का पूरी तरह खोज लगाएं और इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करें। तो इस हिस्से का उन्वान क्या है? नबी की बद्दुआ। अब यहाँ देखिए, सीखने की बहुत सारी बातें हैं कि अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस दरबार से निकाल दिए गए तो अब वो आगे मुस्तक पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, लेकिन इस बात पे खुश नज़र आते हैं कि अब अगर मुझे मार भी दिया गया तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लिया। यानी इससे आपको उन सहाबे कराम की वो कैफियत महसूस होगी कि अल्लाह के नबी की इत्तबा कैसी थी, आपकी इताअत कितनी थी, आपकी बात को मानने का शौक़ कितना था। फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास जब आए तो पता चला कि आपका ख़त फाड़ दिया, तो बेसाख्ता आपने उनके लिए एक बद्दुआ की कि जिसने हिदायत के पैगाम को ठुकरा दिया फिर उसकी जो इक्तदार है या उसकी चीज़ कायम कैसे रहेगी। बाहर देखने में ये एक बद्दुआ लगती है लेकिन हकीकत में ये एक खबर है। क्यों? कि हर वो बंदा जिसको अल्लाह ताला मौका दे हिदायत का या उसको किसी चीज़ को समझने का, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो हकीकत में वो अपने पाँव पे खुद को कुल्हाड़ी मारता है। ज़िंदगी में हर बंदे के पास ऐसा मौका आता है कि अल्लाह ताला उसको मौका देता है कि तुम सीखो, समझो या अल्लाह के दीन को कबूल करो। अगर वो नहीं करता तो फिर गोया के वो तो उस वक़्त अपनी बड़ाई का शिकार होता है, लेकिन असल में वो अपने आप को हिदायत से दूर करता है। हम अपने आप को ज़रा चेक करें, क्या ज़िंदगी में किसी ऐसे हिदायत के मौके को हमने तो नहीं ठुकराया? और आज कितने ही लोग हैं जो ठुकरा देते हैं। एक कॉल मिलती है, एक दावत मिलती है अल्लाह के दीन की तरफ आने की, और बाज़ दफ़ा अपनी बड़ाई का एहसास सामने आता है और इंसान उसको अहमियत नहीं देता। हूँ मैं फारिग नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन क्या पता वही वक्त हो कि जिसमें इंसान का जो है वो दिल बदल जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के बाद, यानी जो उसने अपने जर्नैल को कहा कि चलो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा जाए और उसको हमारे सामने रखा जाए, इस अंदाज से क्या बात समझ आती है? उस दौर में भी लोग यानी हर जगह पे अपनी पकड़ धकड़ को जायज़ समझते थे। उनका ख्याल ये था कि जो लोग भी हमारे कानूनों को ना माने, हमारे असूलों से इनहराफ करें या हमारे रूल्स को ना फॉलो करें या हमारी बड़ाई का इजहार ना करें तो फिर उनको कैद ही कर दिया जाना चाहिए। यानी ये एक जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल हो सकती है जो उस दौर में मौजूद थी। ये दोनों शख्स तेज़ी से सफ़र करते हुए पहले ताइफ पहुँचे। कुरैश के चंद ताजिरों से इनकी मुलाकात हुई। इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो यसरब यानी मदीना में रहते हैं। ताजिरों को जब ये मालूम हुआ कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो ये खुशी से फूले न समाते हुए शादाओं फरहाँ मक्का पहुँच कर कुरैश को इन अल्फाज में मुबारक दी। ए अहले कुरैश, खुश हो जाओ और चैन से रहो, अब किसरा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठन गई है और इनको गिरफ्तार करने के लिए अपने आदमी रवाना कर दिए हैं, अब तुम इनके शर से बच जाओगे। दुश्मन थे ना, खुश हो गए कि चलो अब ये खुद ही आपस में निपट लेंगे। बाजान के इन दोनों नुमाइंदों ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। वहाँ पहुँच कर नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और बाजान का ख़त आपको पहुँचाया और कहा कि शहनशाह किसरा ने हमारे बादशाह बाजान को हुक्म दिया कि वो आपको पकड़ कर इसके दरबार में पेश कर दे। हमें इसीलिए भेजा गया कि आपको अपने साथ ले जाकर इसके हवाले कर दें। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो इसमें आप ही का भला है, और अगर आपने हमारे साथ चलने से इनकार किया तो जान लीजिए कि किसरा का जाहो जलाल और इसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है। वो इस बात पर कतई कुदरत रखता है कि तुम्हें और तुम्हारी साथ तुम्हारी कौम को हलाक कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये बच्चों वाली बातें सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि आज तो तुम अपनी क़यामगाह में आराम करो, कल देखा जाएगा। जब दूसरे दिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा क्या आप किसरा के दरबार में पेश होने के लिए तैयार हैं, इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन किसरा? सुन रखो, आज के बाद तुम इसका चेहरा कभी न देख पाओगे, अल्लाह ने इसे हलाक कर दिया है। इसका बेटा इसको कत्ल करके खुद सल्तनत पर काबिज हो गया है। इन दोनों का इस खबर को सुनना था कि हैरान और शशदर रह गए और खौफ और दहशत के मिले जुले जज्बात से आपकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, जो कुछ आप कह रहे हैं क्या आपको इसका यकीनी इल्म है? क्या ये वहशतनाक खबर हम बाजान तक पहुंचा दें? आपने इरशाद फरमाया, हाँ ये सच है। इसके साथ साथ ये भी इसे बता देना कि दीन इस्लाम का दायरा किसरा की सल्तनत तक फैल जाएगा। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हम वो सभी कुछ तुम्हारे हवाले कर देंगे जो अब तुम्हारे पास है। गोया इस सूरत में तुम्हारी मौजूदा हुक्मरानी बदस्तूर कायम रहेगी। तो ये था हिस्सा, इसका उन्वान क्या है? नबी की पेशन गोई, फोरकास्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें आप देखिए कि सीखने की बातें ये हैं कि जब उसका जोश और गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तो उसने नबी सल्लम को पकड़वाने तक की बात कर दी और लोग लेने के लिए भी आ गए, लेकिन आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, कोई उससे पनाह नहीं मांगी और ये नहीं कहा कि देखो तुम मुझे छोड़ दो और ऐसा नहीं करो। आपका तहम्मुल कितना नजर आए कि आज तुम आराम करो, यानी उसको फौरन आने वालों को बुरा नहीं कहा या किया नहीं, बल्कि उनको उनके रहने की जगह रखी और कहा आराम करो। और फिर आप देखिए कि एक और चीज़ जो इसमें मिली कि नबी सल्लम को वही के जरिए से खबर हो गई कि वहाँ किसरा में क्या हुआ। अब अरब और ईरान देखिए तो कितना फासला है बीच में, लेकिन कौन था जिसने रातों रात आपको ये खबर दिला दी? अल्लाह की वही। इससे अल्लाह के नबी सल्लम के रसूल होने का एक हवाला भी मिलता है और ये दलील है इस बात की कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लम को वही के जरिए से खबरें देते थे। अगली चीज़ जो आपने देखी कि उसके बेटे ने ही उसको खुद कत्ल किया, इससे क्या पता चलता है कि वो शख्स जो दूसरे मुल्क में रहने वाले शख्स को अपना गुलाम समझता था या उन पे रोब डालना चाहता था, लेकिन अपने ही बेटे के हाथों अपने आप को बचा नहीं सका। यानी बेटा तो उसका गुलाम बन ना सका, दूसरे कहाँ बनेंगे। फिर आगे देखते हैं, ये दोनों नुमाइंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख्सत होकर बाज़ान के पास पहुंचे और उसे ये खबर सुनाई। उसने सुनकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सच साबित हुई अगर, तो फिर इनके नबी होने में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर ये बात सही साबित न हुई तो फिर हम इनके मुतल्लक जो राय कायम करेंगे वो तुम भी देख लोगे। अभी ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि बाज़ान को किसरा के बेटे शेरविया का ये खत मौसूल हुआ जिसमें ये तहरीर था, मैंने किसरा को मार डाला और मारा भी इसलिए था कि अपनी कौम का इंतकाम ले सकूं। इसने अपने अहदे इक्तदार में मेरी कौम के शुरफा का कत्लेआम शुरू किया था। यही नहीं, इसने इन औरतों की बेहुर्मती भी की और इनके मालो दौलत को भी छीन लिया। मेरा ये खत जब तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम मुझे आके मिलना। बाजान ने शेरविया का खत जब पढ़ा तो इस खत को एक तरफ फेंक दिया और इस्लाम कबूल किया, और इसके साथ साथ यमन के शहरों के तमाम फारसी उल नस्ल बाशिंदे भी मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर, हक साबित हुआ और बात झूठ जो थी वो झूठ हुई। इस हिस्से का उन्वान क्या है कि पेशन गोई सच साबित हुई। अब आप देखिए कि इसमें कितनी बातें हैं अमल की हम सबके लिए जो हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच हुई, ये भी आपके सादिक होने की दलील है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय यूहा, यानी आप जो भी बोलते थे वही के साथ बोलते थे। फिर दूसरी बात आप देखिए कि बेटा दुश्मन हो गया और उसने बाप से क्या कह के इंतकाम लिया कि इसने शरीफ लोगों को कत्ल किया था। इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान दूसरों पे जुल्म करता है तो दुनिया में भी उसका बदला मिलता है। जिसने औरतों की बेइज्जती की, माल लूटे, तो इससे पता चलता है कि हर दौर में कहीं ना कहीं जुल्म की और तशद्दुद की वारदातें होती ही रहीं, क्योंकि अक्सर लोग जब किसी बड़े आला दर्जे पे पहुंचते हैं तो फिर वो अपने आप को कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम समझने लगते हैं और वो फिर हर एक के साथ अपना मामला जो है वो इस तरह का रखते हैं कि जो बात इनकी माने उसको तो जीने देंगे और जो बात ना माने उसको नहीं जीने देंगे। फिर आप देखिए कि बाज़ान जो शख्स था वो भी कुफर पे, लेकिन जब उसने अल्लाह के नबी सल्लम का ये मोजज़ा देखा कि उनकी बताई हुई खबर सच्ची हुई तो मुसलमान हो गया। क्यों मुसलमान हो गया? क्योंकि इसके दिल में तासुब नहीं था, ये साफ दिल से पाक दिल से बात सुनने वाला था और नतीजे में ये बिल्कुल कैसा हो गया, हक मिल गया। हर इंसान को हक का मौका मिलता है, लेकिन वो लोग जो अपने आप को अना के ऊपर रखें, बड़ा समझें, फिर उनके साथ ये मामला जो है वो फिर बदल जाता है। ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन खुजाफा रज़ी अल्लाहु अन्हो की फारिस के बादशाह किसरा के साथ मुलाकात की दिलचस्प दास्तान हुई। कैसरे रूम के साथ भी इनकी मुलाकात की तफसीलात अब आगे आएंगी। कैसर के साथ आपकी मुलाकात का वाक़या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हो के दौरे खिलाफत में पेश आया। ये भी एक अजीब व गरीब दास्तान है। 19 यानी 19 हिजरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 19 ईयर्स के बाद حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں، اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ کو رومی فوج نے گرفتار کیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ تو اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ ایک اور آزمائش۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کی آزمائشیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ ایک دربار سے بچے تب دوسرے میں جا رہے ہیں، اور معاملہ واضح ہے کہ اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو تھوڑی سی چیز ہم اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے اس مشن کو نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور ان کے دور میں پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جنگیں بھی کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ شخصیات کے ساتھ نہیں جڑتے، انسانوں کے ساتھ نہیں جڑتے، گروہوں کے ساتھ نہیں جڑتے کہ جب تک وہ گروہ ہے تب تک تو ہم ساتھ رہیں گے، اور گروہ نہیں تو ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے لیے کوششیں جب ہوتی ہیں تو جب تک اللہ کا نام رہتا ہے انسان اس کام کے اندر شامل رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے کام کو ہوتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اللہ کے نام کو بلند ہوتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ کہ اپنے نام یا اپنے کسی کام کو دیکھ کے۔ اور صحابہ کرام اس تعصب سے بالکل پاک تھے کہ کون کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس کی کوششیں کس کے ساتھ ہیں۔ آج امت مسلمہ کو یہ سبق دوبارہ پڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہم خانوں میں بٹ گئے اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس بات کی فکر تو شاید کم ہوگی کہ اللہ کا دین اونچا ہو، اس بات کی فکر زیادہ ہو گئی کہ ہمارا نام، ہمارا مسلک اور ہمارا کام اونچا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی کتاب کے لیے اور اپنے نام کے لیے جڑنے والا بنا دے، اور اسی کے پیغام کو عام کرنے میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا میری ایک تجویز ہے، یعنی میرا ایک مشورہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں، آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے جرأت اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں میں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مر جاؤں۔ قیصر نے کہا آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا خدا کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرت العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تھوڑا سا بھی ہٹ سکوں۔ اس نے غصے میں آ کر کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ پھانسی کے تختے پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ بناؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گرے اور ہاتھوں کو زخمی کر دے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلائے گئے۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی، یعنی عیسائیت کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا اور بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے پھانسی کے تختے سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ 2 مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ गरम और खौलते हुए तेल में गिरते ही इसका गोश्त पोस्त चटकने लगा। पलक झपकते ही खाल हड्डियों से अलग हो गई। इसके बाद अब्दुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, अब भी मौका है, इस आयत को कबूल कर लो। आपने पहले से भड़कर दावत को ठुकरा दिया। जब कैसर हद दर्जा मायूस हो गया तो इसने चारों नाचार यानी ना चाहते हुए भी इन्हें खौलते हुए तेल में फेंक देने का हुक्म दिया। जब आपको देख के पास लाया गया तो आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़े। कैसर के हवारियों ने जब ये देखा तो अरज की, हजूर ये तो सचमुच रो रहा है। उसने गुमान किया कि शायद इस तकलीफ से घबरा गया है, इसे मेरे पास लाओ। जब आपको कैसर के पास पेश किया गया तो इसने आपको तीसरी मर्तबा ईसाइत के सामने सर झुकाने की दावत दी। आपने इस बार भी इनकार कर दिया। इसने ताज्जुब से पूछा, अरे ये बात थी तो तुम रोते क्यों थे? आपने जवाब दिया, मेरे रोने की वजह ये थी कि ये मंजर देखकर मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही जान है। काश मेरे पास हजार ऐसी जानें होती और हर जान को इस खौलते हुए तेल में डालकर राहे खुदा में कुर्बान कर देता। इस जालिम का ये सुनना था कि उंगली मुंह में दबाकर कहने लगा, अब अगर तुम मेरे सर को चूम लो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद कर दोगे? उसने कहा, हाँ, मैं तमाम मुसलमान कैदियों को भी रहा कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा, यानी अगर मैं दीन के इस दुश्मन के सर को चूम लूं और इसके बदले में ये सब कैदियों को आज़ाद कर दे तो इसमें क्या हर्ज है? फिर आप इसके करीब आए, इसके सर पर अपना बोसा दिया यानी किस किया। कैसरे रूम ने हस्बे वादा हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान कैदियों को हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा के सुपुर्द कर दिया जाए। चुनाचे वो इनको अपने साथ ले जाएं। रहाई पाकर अब्दुल्ला बिन हुजाफा रजी अल्लाह अन्हो सीधे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और आपको सारी बात तफसील के साथ सुना दी। फारूक आजम ने इंतहाई मुसर्रत का इजहार फरमाया और कहने लगे, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन हुजाफा के सर को चूम ले। और लो, मैं सबसे पहले इनके सर पर बोसा देता हूँ, फिर आप उठे और इनके सर का बोसा लिया। रदी अल्लाहु अन्हो। कैसे लोग थे? इसका उन्वान क्या होना चाहिए? इस्तकामत का पहाड़। आप भी सोचते होंगे ना कभी, क्या इन लोगों को दर्द नहीं होती थी? क्या इनको चोट नहीं लगती थी? क्या इनके जिस्म गोश्त के नहीं बने हुए थे? ना पत्थरों पे लिटाए जाने से घबराए, ना कोयलों पे बिछाए जाने से घबराए, और ना जलते हुए तेल में डलने से घबराए। यही होती है चीज़, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तूअदून। किस तरीके से आप देखिए कि दरबार में पेश किए गए और 3 दफ़ा उसने इस आयत की दावत दी, कबूल नहीं की। बाज़ दफ़ा ये दावत ज़ुबान से दी जाती है और बाज़ दफ़ा हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि ये दावत कबूल कर ली जाए। बाज़ दफ़ा इंसान ज़ुबान से इकरार करता है कि हाँ मैंने इसको कबूल की, और बाज़ दफ़ा इंसान अपने आमाल से भी कबूल कर लेता है। बहुत मामूली फ़र्क होता है ज़ुबान से किसी के मज़हब और दीन को कबूल करना या अपने अमल से, अपने रवैयों से, अपने कल्चर से उनके दीन को कबूल करना। आखिर चीज़ क्या थी उनके अंदर? अल्लाह की मोहब्बत, ईमान, अल्लाह के नबी सल्लम की इत्तेबा। फिर आप देखें कि बार बार जो बादशाह कह रहे हैं उनको कि अच्छा मान जाओ, वो मरना नहीं चाहता था। इससे क्या पता चलता है कि बादशाह जो था उसने पहचान लिया था कि ये बड़े आला पाए के इंसान है, तो ऐसे शख्स को मारने की बजाय अपने साथ मिला लो। अकलमंद था ना, कोशिश पूरी की लेकिन ना माना। फिर आप देखिए कि फांसी का हुक्म दिया, उनको हाथों में तीर लगे। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, हमें अगर अल्लाह के रास्ते में तीर लगे वो तो दूर की बात है, हम तो थोड़ा ज़्यादा चल लें तो थक जाते हैं, हमें ज़्यादा देर बैठना पड़े तो हम थकते हैं, हालांकि हमारे पीछे नरम कुशन भी होता है, आरामदेह कुर्सी भी होती है, हम चाहें तो अपने पांव ज़मीन पर लटकाने की बजाय आगे स्टूल भी रख सकते हैं, हम चाहें तो अपने हाथ में चाय का एक कप भी रख सकते हैं अपनी थकन दूर करने को, लेकिन क्यों इस्तकामत नहीं आती? इसलिए कि हमें आदत नहीं रही, हमने अल्लाह के दीन को उस तरह लिया ही नहीं, और इसमें कसूर हमारा कम है। कसूर से मुराद ये आदत नहीं डाली, हमें बचपन से ये चीज मिली नहीं कि कैसे लोग जमते थे। मैं सोचती हूँ कि अगर आज के दौर में भी सहाबे कराम में से कोई आए तो लोग उससे भी ये पूछेंगे, बताओ कि तुम पार्ट टाइम हो कि फुल टाइम हो। हमने जब पार्ट टाइम और फुल टाइम की डिस्टिंग्विश की चीज़ों को, तो हमने इस्लाम के लिए भी यही सोच लिया, अल्लाह के दीन के लिए भी यही सोच लिया। हम जब जॉब करते हैं तो हम पूछते हैं, बताओ फुल टाइम जॉब होगी या पार्ट टाइम होगी। इसी तरह अल्लाह की जॉब्स को भी हम यही सोचते हैं कि ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। मुझे तो कोई सहाबी ऐसा नहीं मिला कि जिसने अल्लाह के दीन का काम पार्ट टाइम किया हो। उनका तो फुल टाइम होता था, हाँ बीच में से कुछ टाइम लेके तो दुनिया का भी कर लेते थे। दोनों रास्तों को साथ साथ लेके चलते थे, लेकिन जब सच्चा ईमान अंदर आता है ना, तो फिर इंसान थकन थकन नहीं लगती, चुभन चुभन नहीं लगती, और उसको नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, मेरे पास कितना वक्त है, कल किसने देखी है, और अल्लाह के पैगाम को लेके कहाँ तक फैले। ये है वो लोग जिनकी वजह से इस्लाम इतना जिंदा रहा, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम की वफात के सिर्फ 12 साल के अंदर कैसरो, किसरा, रोम, फारस, ईरान, ये सब मुसलमानों के हाथ में थे। आप जरा एक लम्हे के लिए हकीकत से जरा सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, हम किसी जगह पे 10 साल से रह रहे हैं, हमने उर्द गिर्द गिर के कितने लोगों को इस्लाम दिया। यानी हम जब बादशाहों की बातें पढ़ते तो हम कहते हैं हाँ वाकई ऐसा नहीं और वैसा, लेकिन ठीक है हम बादशाह नहीं है, हम पे लाइबिलिटीज बड़ी हुकूमतों की नहीं है, लेकिन क्या अपने इर्द गिर्द रहने वालों की कोई लाइबिलिटी है हमारे पास? कुल्लुकुम रायुन, तुम में से हर एक निगेबान है, चरवाहा है, उससे पूछा जाएगा उसके इर्द गिर्द। मैं एक बस्ती में रहती हूँ, मैं एक टाउन में रहती हूँ, मैं एक जगह में रहती हूँ, मैंने पिछले 10 साल में उसके इर्द गिर्द कितनी तब्दीली पैदा की, मैंने कितने लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया, मैंने कितनी बातें सुनी। आप देखिए वो 100 उजर कर सकते थे, हम नहीं करते जी, रहने दें, क्या पता जान चली जाए, बादशाह के दरबार में भेज रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ नहीं, कुछ भी कर दे, यानी ये जान हथेली पे रखने वाली बात थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की किसी बात पे वो नो नहीं कहते थे, नहीं ये जॉब मैं नहीं कर सकती, ये टास्क मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कोई तकाबुल करें तो कोई बनता है तकाबुल? क्या आप इस बात को सुन के, इन कहानियों को सुन के अपने लिए महसूस करते हैं? सारी बातें देखें कि हम दूसरों को तो नहीं कह सकते ना, हमें तो अपनी जात को चेक करना है। क्या ये कहानी कोई ऐसी थी कि हम इसको पढ़ते या सुनते? आप खुद घर में पढ़ लेते, लेकिन जब हम यहाँ सब बैठे हैं तो क्या आपको ये सुनना कुछ फायदा देता है? कोई चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के ईमान को पैदा करे। अल्लाह ताला बस आजमाइशों से बचाए, लेकिन काम करने के अज़म कर लीजिए, अल्लाह बचा लेगा। आप सर एक लम्हे के लिए इमेजिन तो करें कि आपके सामने एक जलती हुई कड़ाही के अंदर किसी इंसान को डाला गया और वो चुरर मुर्रर हो गया, और कहा जब सेम यही तुम्हारे साथ किया जाएगा। ऐसी ही आजमाइश आपको पता है असहाबुल बुरूज में भी हुई थी। आप सूरह बुरूज में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इस्लाम की बुनियाद पे लोगों ने खाइयों में डलवाया था, तो वहां भी एक औरत जो थी उसने अपने बच्चों को उठाया हुआ था, जब उसको बादशाह ने मजबूर किया कि तुम इस्लाम छोड़ो वरना तुम्हें आग में डालेंगे, तो नहीं तो उसने उसके बच्चे को पकड़ के उसके सामने जलते हुए तेल में डाला और बच्चा चुड़मुड़ हो गया। फिर दूसरे को डाला, जब तीसरे को डालने लगा जो गोद का बच्चा दूध पीता था, तो माँ के दिल को हाथ पड़ा, हाय बच्चा चलो दो चले गए इसको बच्चा। करीब था कि वो अपने मौकफ से हटती, वो बच्चा बोल उठा कि माँ गम ना करो हम जन्नत में, और वो उन 4 बच्चों में से है जो बचपन में बोले थे। अल्लाह अकबर। हमें कोई इस्लाम की वजह से कोई बात कर दे, या अगर हमारा अटायर ऐसा है, या हमें देख के आउटलुक ऐसा है कि मुसलमान है, और कोई कुछ हंसता है या बोलता है, तो हम तो उस पर परेशान होते हैं। वो तो मुस्कुराते होंगे, वो तो हंसते होंगे इन बातों पे कि इस्लाम की वजह से बातें हो रही है, और हम इन्हीं चीज़ों से इस्लाम को छोड़ने पे आने लगते हैं। क्या आप लोग महसूस नहीं करते इस चीज़ की अहमियत? ठीक है, अब वक्त पूरा हो गया हमारी क्लास का। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।